और वहां पर अंत में भगवान के साथ सारूप्य प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं। यह प्रसंग था जो आपके समक्ष उठाया गया था। चौथे स्कंध के अंतर्गत और थोड़ी सी कथा चौथे स्कंध की और बाकी है, उसको देख लें और फिर उसके बाद पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर के जो दो तीन शंकाएं हमने पिछली बार खड़ी की थी, उन शंकाओं की समस्या की दिशा में थोड़ा सा विचार करें। तो हमने कहा कि किस प्रकार प्राचीन वर ही भगवान के लोक को प्राप्त कर लेते हैं, अपने पुत्रों को राज्यपाट सौंप करके। और फिर हमने यह भी कहा था कि कैसे प्रचेतागण अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करके तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। जल के भीतर में वे खड़े होकर के तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न करते हैं और उनके समक्ष पुराण पुरुष श्री विष्णु प्रकट होकर के आशीर्वाद मांगने के लिए कहते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रचेताओं की सभा में पूछा गया था विदुर जी के द्वारा कि प्रचेताओं के संबंध में आपने जो कहा, ये प्रचेता कौन थे। उसी प्रश्न के उत्तर में यहां पर यह सारा क्रम चला। प्राचीन बरही का इतिहास आया। प्राचीन बरही जो पहले बहुत कर्मकांडी थे, यज्ञ में पशु की बलि देते थे, तो देवर्षि नारद उनके जीवन में आते हैं। प्राचीन बरही को यज्ञ की व्यर्थता समझाते हैं और यही कहते हैं कि प्रभु के चरणों में भक्ति ही एकमात्र काम्य है, उसी से मनुष्य का जीवन धन्य होता है। अब ये जो प्रचेतागण थे, ये समुद्र के जल में प्रविष्ट होकर के भगवान श्री नारायण की आराधना कर रहे थे। प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं उनके सामने। जब तपस्या करते करते 10,000 साल बीत गए, तब मैंने अपने पूर्व प्रवचनों में यह भी निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत में तथा अन्य पौराणिक साहित्य में जो गणित का क्रम है, उसे हमें इतिहास की दृष्टि से नहीं देखना है, वह केवल भाव की दृष्टि से द्रष्टव्य है। अन्यथा 10,000 वर्ष की बात समझ में नहीं आ पाती कि जब वेदों में मनुष्य की परम आयु 100 वर्ष की गाई गई है, तो यहां पर हजारों वर्ष तपस्या में बिता दिए गए, इस प्रकार के उल्लेख कई स्थानों पर प्राप्त होते हैं। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम लोग वर मांगो। और तब जिस समय वर मांगने की बात आती है, तो वे लोग यही वर मांगते हैं कि प्रभु आपके दर्शन से हमारे चित्त में जो संशय था वह दूर हो गया है, ग्लानि थी वह भी मिट गई है, अब तो केवल यही कृपा कीजिए कि हम कभी भी आपको भूलें नहीं। और तब प्रभु अपनी ओर से एक राजकुमारी का निर्देश देते हैं कि इसके साथ तुम्हें विवाह करना है। विवाह करने के बाद किस प्रकार से प्रजा पालन करना है वह यहां पर बताया है भगवान के द्वारा। मानो यह जैसे हमने कहा कि प्रारंभ में सृष्टि का विस्तार, यह सृष्टि का विस्तार कैसा हो, इसका क्रम यहां पर हमारे समक्ष रखा गया है। तो भगवान ने कहा, यह देखो, यह कमल नैनी बाला प्रमलोचा अप्सरा से जो उत्पन्न हुई थी, यह तुम लोगों के लिए सती साध्वी पत्नी के रूप में सिद्ध होगी।
तुम लोग इसका ग्रहण करो, राजा चंद्रमा ने ही इसका पालन पोषण किया है। अब यहां पर इसके कुछ सांकेतिक तत्व तो हैं, अर्थ है, परंतु उस सांकेतिक अर्थ को निकालना कम से कम मेरे लिए कठिन बात है कि वह जो बाला है प्रम्लोचा अक्षरा के गर्भ से पैदा हुई है, उसके पिता कंडु ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस तपस्या में बाधा डालने के लिए प्रम्लोचा को भेजा और कंडु और प्रम्लोचा के कारण इस कन्या का जन्म होता है। अब प्रम्लोचा इस कन्या को छोड़कर के चली जाती है तो वृक्ष इस कन्या का पालन पोषण करते हैं और राजा चंद्रमा उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी अंगुली दे देते हैं, मानो चंद्रमा की चांदनी में और वृक्षों के द्वारा सेवित होकर के यह कन्या बड़ी होती है। तो भगवान कहते हैं इन प्रचेताओं से कि तुम लोग इस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो, तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली यह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा और फिर तुम लोग 10,00,000 दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। तो यहां पर भी 10,00,000 वर्ष का वर्णन है, तो जिसको समझना बड़ा कठिन कार्य है। तो अब फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में कैसे रहें, यह भगवान नारायण उनको उपदेश प्रदान करते हैं कि तुम लोग जो भी कर्म करो मेरी प्रीति के लिए करो, भगवत अर्पण बुद्धि से ये सारे कर्म करो। यह इस प्रकार का उपदेश भगवान नारायण प्रचेताओं को देते हैं। अब फिर उसके बाद प्रचेतागण भगवान नारायण की स्तुति करते हैं और स्तुति करते करते वरदान के रूप में वे कहते हैं कि प्रभु एक वरदान आपने जब कहा ही है तो हम मांगते हैं, वैसे तो आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए पर्याप्त है। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं, आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए, बस हमारा अभीष्ट बल तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि हे नाथ, एक वरदान आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभो, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। देखिए प्रभो, यदि भ्रमर को अनायास ही कल्पवृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा? तब जब हमें आपके चरण कमलों के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हो गया है तो हम उन चरण कमलों को छोड़कर के भला कहां जाएंगे, हम कहीं भी नहीं जाना चाहते। तो वह वरदान यही है, यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संगस्यान्नो भवे भवे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। केवल यही वरदान मांगा, यह नहीं कहा कि आप हमें मुक्त कर दें या हमारे कर्मों को काट दें। कहा कि हम कर्मों को काटने के लिए आपसे नहीं कहते, कर्मों का फल हमें प्राप्त होता रहे और जहां भी हम जन्म लें केवल वरदान के रूप में यही मांगते हैं कि हमें आपके प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त होता रहे। यह जो सत्संग है इसे वरदान के रूप में चाहा इन प्रचेताओं ने और भगवान इन प्रचेताओं को वह देते हैं, वरदान देते हैं और फिर उसके बाद वे अपने स्वधाम को चले जाते हैं। और फिर इसके बाद वर्णन है कि किस प्रकार ये प्रचेतागण आते हैं, समुद्र के जल से बाहर निकलते हैं और वे राज्य की ओर लौटते हैं। कन्या प्राप्त होती है वही जिससे विवाह के लिए भगवान का आदेश है, तो फिर विवाह करते हैं, नवीन प्रजा उत्पन्न होती है और फिर इसके बाद जब 10,00,000 वर्ष तक भोगों में बीत गए तो देवर्षि नारद की जो बात थी वह बात प्रचेताओं को स्मरण में आती है और उन्हें लगता है कि अरे भगवान ने कहा था कि 10 लाख वर्षों तक तुम लोग भोग भोगो और फिर उसके बाद तुम लोग मेरे स्वधाम में आ पहुंचो। तो फिर वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहां पर जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जा पहुंचे और फिर वहां पर संकल्प लेकर के वे बैठ जाते हैं। और संकल्प लेकर के बैठ करके फिर यहां पर कहा गया कि वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का संकल्प ले लेते हैं। तो देवर्षि नारद का आगमन वहां पर भी होता है। देवर्षि नारद ने देखा प्रचेतागण आए हुए हैं, तो देवर्षि नारद को देख करके प्रचेतागण खड़े हो गए, प्रणाम किया, विधिवत उनकी पूजा की, आसन प्रदान किया और फिर उसके बाद प्रचेताओं ने कहा, हे देवर्षि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए ही होता है। यह इस प्रकार की स्तुति की और फिर इसके बाद वे कहते हैं कि आप अध्यात्म ज्ञान को हमारे समक्ष प्रकाशित कीजिए, जिससे हमारे हृदय में जो अज्ञान का कलमश है वह कलमश दूर हो जाए, जिससे हम सुगमता से इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, जब इस प्रकार प्रचेताओं ने देवर्षि नारद से अनुरोध किया तो देवर्षि नारद कहने लगे कि देखो राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्रीहरि का चिंतन किया जाता है। जिस वाणी में भगवान का नाम नहीं वह वाणी निष्फल है। जिस कर्म के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं होता वह कर्म निष्फल है। जो आयु भगवान के लिए समर्पित नहीं, जो मन ईश्वर के चरणों में समर्पित नहीं, वह मन केवल मनुष्य को संसार से ही तो बांधता है। और इस प्रकार वे धीरे धीरे इंद्रियों की असारता, विषय भोगों की असारता समक्ष में रखते हैं, समझाते हैं और समझाने के बाद वे यह भी बता देते हैं कि किस प्रकार से साधना करनी होगी। तो यहां तक ऐसा कहने के बाद यह बताया यहां पर भागवतकार ने, फिर वे तपस्या करते हैं, तपस्या से सिद्धि प्राप्त करते हैं और फिर वे ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। यहां मानो वह कथा समाप्त होती है प्रचेताओं की। और शुकदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, तुमने स्वयंभू मनु के वंश के संबंध में प्रश्न किया था, तो अब यह तुम्हारे समक्ष मैंने उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया, अब प्रियव्रत के वंश का भी विवरण सुनो। और राजा प्रियव्रत ने किस प्रकार देवर्षि नारद से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर के राज्यभोग किया था और अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट करके वे भी भगवान के परमधाम को प्राप्त हुए थे, यह कथा भी कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित के सामने। और तब श्री सुखदेव कहते हैं कि यह एक ऐसी कथा है जिस कथा को जो पुरुष सुनेगा उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यह मानो चतुर्थ स्कंध का, चौथे स्कंध का अंतिम भाग, और जो पंचम स्कंध है उसे हम इसके बाद से लेंगे। तो यहां पर जो हमने कहा था कि चौथे स्कंध में राजा प्राचीन बरही को निमित्त बना करके जो कर्म का प्रश्न उठाया, पुनर्जन्म का प्रश्न उठाया, तो उस पुनर्जन्म के प्रश्न पर विज्ञान की दृष्टि से हम लोगों ने विचार किया कि विज्ञान क्या कहता है, जीवन के संबंध में उसकी क्या मान्यता है। इस पर हमने प्रायः भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया है। अब तीन प्रश्न पिछली बार हमने इस संदर्भ में उठाए थे। एक प्रश्न तो यह था कि यह जो कर्मों का संस्कार होता है तो मन पर कैसे होता है, ये संस्कार सुरक्षित तो रहते हैं, प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और हमारे लिंग शरीर का भी निर्माण करते हैं। लिंग शरीर का मतलब है जो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन दोनों को मिलाकर के लिंग शरीर कहा जाता है। इन शब्दों को मैं बारंबार आपके सामने दोहराऊंगा जिससे सुनते ही आप समझ लें। जैसे हमने कहा कि शास्त्रों की मान्यता है कि मनुष्य के तीन शरीर हैं। एक तो स्थूल शरीर है जो बाहर में दिखाई देता है, और इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर यह मानो जिसे हम मन कह दें सामान्य भाषा में, तो उसको कहते हैं यह सूक्ष्म शरीर। और जो कारण शरीर है वह कारण शरीर मानो सूक्ष्म का अधिष्ठान। इसको कैसे समझें, कारण शरीर भी सूक्ष्म ही है। जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहेंगे तो वह कारण भी है, पर दोनों को अंतर थोड़ा थोड़ा करके बता दिया कि सूक्ष्म शरीर का क्या मतलब और कारण शरीर का क्या मतलब। सामान्य दृष्टि से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक ही प्रकार के तंतुओं से बने हैं, बनने में बनावट में कोई भिन्नता नहीं। बनावट में भिन्नता है केवल स्थूल शरीर की और सूक्ष्म शरीर की। स्थूल शरीर का मतलब ये जो कण दिखाई देते हैं, यह शरीर दिखाई देता है, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, यह जो भौतिक शरीर है इसको स्थूल शरीर कहा। पर इसके भीतर भी सूक्ष्म कणों के द्वारा निर्मित हमारा शरीर है, उस सूक्ष्म कणों के निर्मित शरीर को हम लोग देख नहीं पाते हैं। यह जो देख नहीं पाते हैं इसका कारण हमने कहा कि ये जो हमारी आंखें हैं, भौतिक इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में वह सामर्थ्य नहीं है। परंतु ऐसा जो योगी पुरुष है जिसने तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को ऊर्ध्व में कर लिया, ऐसा पुरुष उस शरीर को देख पाता है। उसकी आंखों में कुछ ऐसी दिव्य शक्ति आ जाती है, और दिव्य शक्ति आने के उदाहरण तो हैं ही। जैसे हम पढ़ते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी, कि संजय ऐसे थे कि वहां पर राजभवन में बैठ करके सारे युद्ध का दृश्य देख सकते थे। तो वहां पर यह कहा गया है कि उनको वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, व्यास देव ने उन पर कृपा करके यह वरदान दे दिया था कि ठीक है तुम राजा धृतराष्ट्र को सारा समाचार सुनाना, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पर बैठ करके तुम वहां का दर्शन कर लोगे। एक यह, और दूसरे हम पढ़ते हैं 11वें अध्याय में जहां पर विराट का दर्शन भगवान कृष्ण कराते हैं अर्जुन को, मानो वह भी उनके सूक्ष्म रूप का दर्शन है। उनका स्थूल शरीर तो दिखाई दे रहा है, अर्जुन की आंखों के सामने श्री कृष्ण का स्थूल शरीर दिखता है, परंतु जब वे विराट दर्शन कराते हैं तो इसका मतलब अपने सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन कराते हैं। पर वे कह देते हैं ददामि दिव्य चक्षुस्ते, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा तभी तू मेरे इस दिव्य रूप को देख पाएगा, अन्यथा वह दिव्य रूप इन आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। और हम पढ़ते हैं कि अर्जुन को दिव्य रूप, दिव्य दृष्टि दी गई, और उस दिव्य दृष्टि से उसने भगवान के उस सूक्ष्म रूप को देखा। ठीक इसी प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य के भीतर अनंत संभावनाएं हैं, हम में अनंत संभावनाएं हैं, हमारे मन के भीतर में असीम शक्ति है, पर यह शक्ति अभी निहित है, गुप्त है। इस शक्ति को प्रकट करने का जो साधन है उस साधन को हम तपस्या कहते हैं, या उसे हम साधना कहते हैं, कि जितना हमारा मन एकाग्र होता है उतना ही उसके भीतर की सूक्ष्म शक्ति प्रकट होती है। अब यह जो सूक्ष्म शक्ति प्रकट होती है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एकाग्रता के द्वारा, आप जैसे देख लें कोई चित्रकार है, बढ़िया चित्र कब बनाता है, सबसे बढ़िया चित्र उसका तब बनता है जब उसका मन एकाग्र हो जाता है। आप किसी भी क्षेत्र को ले लें, जैसे कोई संगीतज्ञ है, बहुत बढ़िया संगीत उसके मुख से कब निकलता है, जब संगीत के साथ वह तन्मय हो जाता है, उस समय उसके जीवन में बढ़िया संगीत निकलता है। तो यह प्रत्येक क्षेत्र की बात है कि मनुष्य जिस समय अपनी अभिरुचि के विषय में मन को केंद्रित कर दे तो उस विषय में वह बहुत बड़ी सिद्धि हासिल करता है। इसका मतलब यही हुआ कि यदि किसी क्षेत्र में हमें सिद्धि हासिल करनी है तो उस क्षेत्र में मनोयोग करना पड़ेगा, मन को वहां पर एकाग्र करना पड़ेगा, तभी उस क्षेत्र की सिद्धि मिलेगी। जैसे बड़े बड़े गणितज्ञ हो गए या भौतिक शास्त्री हो गए, ये कैसे बड़े गणितज्ञ बनते हैं, कि जब गणित को लेकर के वे डूब जाते हैं, उनका मन तन्मय हो जाता है, उस समय गणित शास्त्र के जो सूक्ष्म रहस्य हैं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे आइंस्टीन के संबंध में कहा जाता है, कहते हैं कि वे इतने सूक्ष्मदर्शी थे, वे जब यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम कर रहे थे, माने वह सिद्धांत ऐसा, उनकी ऐसी कल्पना थी कि संसार में ये जितनी भी शक्तियां हैं, तो ये जो शक्तियां हैं तो एक ही शक्ति से ये भिन्न भिन्न शक्तियां निकली हैं। इस बात को तो उन्होंने सिद्ध कर दिया। पहले ऐसा मानते थे कि यह जो आग की शक्ति है वह अलग है, यह जो रोशनी देने वाली शक्ति है वह अलग है, आवाज की शक्ति अलग है, चौंबकीय शक्ति अलग है, माने बिजली अलग है और चुंबक की शक्ति अलग है, ऐसा माना जाता था। पर अभी तो सिद्ध कर दिया गया भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कि ये शक्तियां अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही मूल शक्ति है, उस मूल शक्ति के ये भिन्न भिन्न रूप हैं। एक ही शक्ति कभी बिजली की शक्ति के रूप में प्रकट होती है, कभी वह चौंबकीय शक्ति के रूप में प्रकट होती है, कभी वह ताप के रूप में प्रकट होती है, कभी वह प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। यह तो आज सिद्ध बात हो गई है। अब जो आइंस्टीन थे वे इसमें लगे हुए थे कि किस प्रकार मैं एक इक्वेशन बना दूं, एक समीकरण खोज करके निकाल दूं और उस समीकरण के बल पर संसार में जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों को समझाने में सफल हो जाऊं। यह कार्य वे कर रहे थे, पर वह कार्य साधित नहीं हो सका। तो वह जब कार्य साधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत पहले इक्वेशन निकाला। अब वह इक्वेशन आज तो वैसे बड़ा सरल मालूम पड़ता है, जैसे यह जो ऊर्जा निकलती है, हम कहते हैं कि एटम को हम तोड़ते हैं, एटम को तोड़ने से बहुत ऊर्जा निकलती है, बहुत शक्ति निकलती है, इसीलिए एटम बम कहा। एटम बम का क्या मतलब है? तो एक एटम को तोड़ दें तो बहुत शक्ति निकलती है, उसका नाश भी बहुत होता है। तो अब एक एटम को तोड़ने से कितनी शक्ति निकलेगी? अब यह जो माप है, इस माप को आइंस्टीन ने देखा और उन्होंने एक गणित के फॉर्मूले में बंद कर दिया। वह फॉर्मूला है E=mc². जैसे उनसे किसी ने पूछा, अच्छा यह बताइए कि यह जो मैटर है आपके पास, यह मैटर है, अब यह मैटर यदि आप तोड़ेंगे, इसके अणुओं को तोड़ेंगे तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? तो इसको उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से हमारे समक्ष रखा। ई का मतलब है एनर्जी का माप, ऊर्जा का माप, कितनी ऊर्जा निकलेगी? E=mc². सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की गति। तो सी का मतलब क्या? 186,000 मील प्रति सेकंड, यह प्रकाश की गति है। तो सी का मतलब है 186,000 और उसका वर्ग कर दिया और उसको गुणित कर दिया एम से, मास से। कह रहे हैं वो कि ठीक है, तुम अब लाओ वह वस्तु ले आओ, जड़ वस्तु ले आओ, तो उसका मास जितना होगा उसको गुणित कर दो सी वर्ग से, प्रकाश की गति वर्ग से, तो उतनी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। अब यह जो उन्होंने देखा तो कैसे देखा? क्या उन्होंने कोई कैलकुलेशन किया, ट्रायल और एरर मेथड लिया? ट्रायल और एरर मेथड का क्या मतलब? कि हम कई प्रकार से गुणा भाग करते हैं और एक समीकरण जोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे अभी भी ख्याल है, मैं बार बार उसे उस उदाहरण को बताता हूं ट्रायल और एरर मेथड के संबंध में। जैसे तब हम प्राइमरी कक्षा में पढ़ते थे, शायद दूसरी में, गए हुए थे मामा के यहां। वहां कोई पाठशाला तो थी नहीं, पर एक पंडित जी बच्चों को समेट करके इकट्ठा करके पढ़ाया करते थे। तो छुट्टियों में जब गए थे, पंडित जी को प्रणाम किया, क्या पढ़ते हो? हमने कहा दूसरी में पढ़ते हैं। तो कहा कि दूसरी में तुम क्या क्या पढ़ते हो? तो दूसरी में गणित पढ़ते हैं, ऐसा कुछ बताया। तो कहा कि एक सवाल का हल करोगे, कितने नंबर मिलते हैं? पंडित जी को मालूम पड़ा कि मैं गणित में रुचि लेता हूं, अच्छे नंबर मिलते हैं। अब दूसरी का मतलब सिक्स्थ, दूसरी का मतलब है सिक्स्थ क्लास, छठी कक्षा में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सुना है कि तुम गणित में बड़े होशियार हो, तो तुम एक सवाल का हल कर सकोगे? हमने कहा कि आप बताइए। तो कहा कि देखो, एक आदमी के पास कुछ बकरियां हैं, और कुछ मुर्गियां हैं। अब अगर बकरियों और मुर्गियां इन सब के पैरों का जोड़ करो तो 100 आता है, और अगर बकरी और मुर्गियों का योग करो तो 40 आता है। तो बताओ कितनी मुर्गियां हैं और कितनी बकरियां हैं। अब यह सवाल किया, अब इसको ट्रायल और एरर मेथड कहते हैं। जब हमको फॉर्मूले नहीं मालूम थे, जब बीजगणित नहीं मालूम था, तब तो ऐसे ही हमने करना शुरू किया कि अच्छा बकरी और मुर्गी 40 हैं और पैरों का जोड़ है 100, तब कितनी बकरी और कितनी मुर्गी। अच्छा मान लो हमने मन में सोचा कि 20 मुर्गी और 20 बकरी। अब 20 बकरी के कितने पैर हो गए? 20 बकरी के 80 पैर हो गए। अब 20 मुर्गी के 40 पैर हो गए, तो 20 और 20 40 तो ठीक है, पर पैर 120 हो गए, गलत है। चलो छोड़ो इसको और फिर करो कि इस प्रकार से अच्छा करो कि 30 ठीक है, 30 बकरी और 10 मुर्गी। अब 30 बकरी तो 40 120 पैर पहले ही हो गए, छोड़ ये ठीक नहीं है। और चलो इसको कहते हैं एरर और ट्रायल मेथड, कि मानो हम जमा रहे हैं, ठीक उत्तर में आने की चेष्टा कर रहे हैं, और फिर कभी धीरे धीरे चल करके कहीं उत्तर मिल जाए, फिर चले अच्छा ऐसा देखें 10 बकरी और 30 मुर्गी तो दोनों मिलकर के 40 हो गए। अब 10 बकरी के 40 पैर, 30 मुर्गी के 60, अरे हो गया बिल्कुल 60 धन 40 100। और कहा कि पंडित जी ने कहा था अच्छा तुम्हारी कितने दिन छुट्टी है? 15 दिन। ठीक है तुमको 15 दिन का समय दिया, तुम 15 दिन में बताना। अब वहां पेट में बात पचे कैसे, जब मिल गया उत्तर मिल गया आधे घंटे में, तो चले पंडित जी के पास। कहा पंडित जी हमको तो उत्तर मालूम पड़ गया। मालूम पड़ गया कैसे करके मालूम पड़ गया? हमने कह दिया उसके पास 10 मुर्गियां थे, 10 बकरियां थी और 30 मुर्गियां थी, नहीं तुमको किसी ने उत्तर बताया होगा, तुमको मालूम पड़ ही नहीं सकता। पंडित जी विश्वास ही नहीं कर सके कि ट्रायल और एरर मेथड में इतनी जल्दी मालूम पड़ जाएगा। अब बीजगणित कहीं मालूम हो तब तो एक मिनट में ही मालूम पड़ जाएगा। आप तो जानते हैं कि ठीक है अगर अपन कहेंगे कि उसके पास कब, जैसे कहेंगे उसके पास क बकरियां हैं और ख उसके पास मुर्गियां हैं, तो क धन ख बराबर 40 और 4 क धन 2 ख बराबर 100, और इसमें क ख का मान निकल जाएगा। ये तो बीजगणित का है, तो बीजगणित में तुरंत निकलता है। अब यह जो E इक्वल टू MC स्क्वायर है, तो क्या आइंस्टीन ने इसी प्रकार ट्रायल और एरर मेथड से प्राप्त किया? उनकी एक जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, वहां पर ऐसा प्रश्न उठाया गया कि आपने यह जो देखा तो क्या ट्रायल और एरर मेथड से? उनका नहीं, ट्रायल और एरर मेथड से नहीं, मेरा मन ऐसी इंट्यूटिव हो गया, कहते हैं एकाग्र हो गया, मैं उस समस्या में इतना डूब गया था कि मेरा मन एकाकार हो गया, और इन एन इंट्यूटिव फ्लैश, बस एक ऐसा कुछ इंट्यूटिव फ्लैश मुझे हुआ, और उसी फ्लैश में मुझे यह सामने दी गया, यह इक्वेशन दी गया। इसका मतलब क्या, हम जो चर्चा कर रहे थे कि जिस समय मन हमारा एकाग्र हो जाता है, जिस किसी विषय पर एकाग्र होता है तो उसके रहस्य को खोल देता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे अगर मैं फिर से जन्म लूं और मुझे शिक्षा के लिए कहा जाए तो मैं यह वह शिक्षा नहीं लूंगा, मैं केवल मन की एकाग्रता की शिक्षा लूंगा। किसी ने पूछा क्यों, यदि मेरा मन एकाग्र हो जाए, स्वामी विवेकानंद ने कहा तो उस एकाग्र मन को जिस विषय का ज्ञान मुझे पाना है उस विषय में लगा दूंगा और उससे उसका ज्ञान अपने आप आ जाएगा। और यह बिल्कुल सही है कि जब हम अपने मन को एकाग्र करके किसी विषय में लगाते हैं उस विषय का ज्ञान हमारे पास आ जाता है। तो हम यह कह रहे थे कि मनुष्य के मन में अनंत संभावनाएं हैं, पर इन संभावनाओं को वह व्यक्त करना नहीं जानता, हम प्रकट नहीं कर पाते, तो प्रकट करने के लिए क्या करें, मन को एकाग्र करें। पर यह जो आध्यात्मिक जगत में जो मनुष्य के भीतर की अनंत संभावना है उसको कैसे प्रकट करें, उसके लिए कहा गया कि मन को एकाग्र करो। और मन को कहां एकाग्र करो, मन के ऊपर एकाग्र करो। यह जो अध्यात्म की एकाग्रता है वह भौतिक एकाग्रता से भिन्न है। भौतिक एकाग्रता का क्या मतलब, कि आप मन को भौतिक विषय पर एकाग्र करें जिस भौतिक विषय का ज्ञान आप पाना चाहते हैं। जैसे जो संगीत में आधिपत्य पाना चाहता है वह संगीत में मन को एकाग्र करे, जो चित्रकारी में पाना चाहता है सिद्धि वह चित्रकारी में मन को एकाग्र करे। आप लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग बचपन में प्रेमचंद की कहानी पढ़ते थे, शतरंज के खिलाड़ी, और वहां दिया है कि वे शतरंज में कितने डूब गए हैं, दीन दुनिया का पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहां पर इतने डूबे हैं, उनका मन एकाकार हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार मन अपनी अभिरुचि के विषय में तो एकाग्र हो जाता है, पर इसको हम योग या अध्यात्म की एकाग्रता नहीं कहते। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, जिसमें यह बताया गया शकुंतला के संबंध में कि शकुंतला दुष्यंत से गंधर्व विवाह तो करती है और दुष्यंत वचन देकर के चला जाता है कि मैं तुम्हें राजधानी में बुला लूंगा और अपनी पटरानी बना लूंगा। अब दुष्यंत के ध्यान में इतनी तल्लीन है शकुंतला कि दुर्वासा ऋषि आते हैं, आहट करते हैं, पर शकुंतला को उस आहट का पता नहीं चलता। और दुर्वासा ऋषि आप पढ़ते हैं रोष में आकर के श्राप दे देते हैं कि जा, जिसका चिंतन करती हुई तू मेरी अवमानना कर रही है वही तुझे भूल जाएगा।